ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अपि नः सुहृदः तात बान्धवा कृष्णदेवता दृष्टा श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखम् आसते। अपि न सुहृदस्तात बान्धवः कृष्णदेवता दिष्टा श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमाशते। अपि न सुहृदस्तात बान्धवः कृष्णदेवता दिष्टा श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते। हरे कृष्ण बोलिए। अपि न सुहृदस्तात बान्धवः कृष्णदेवता दिष्टा श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते। अपि न सुहृदस्तात
कृष्णदेवतास्तात
अपि न सुहृदस्तात
बान्धवः कृष्णदेवता
आप लोग बोलिए माता जी। माता जी अपि न सुहृदस्तात
बान्धवः कृष्णदेवता दृष्टा श्रुता यदवः
स्वपुर्यां सुखमासते। और अपि न सुहृदस्तात
बान्धवः कृष्णदेवता
दृष्टा श्रुता वा यदवः अपि क्या न हमारे सुहृद शुभचिंतक ताता हे चाचा जी बांधवा मित्र कृष्ण देवता भगवान कृष्ण की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले भगवान कृष्ण ही जिनके इष्ट देव हैं दृष्टा उन्हें देखकर श्रोता या उनके विषय में सुनकर वा अथवा जदवा जदुवंशी लोग स्वपुर्याम अपने निवास स्थान द्वारिका में सुखम आसते सुख पूर्वक रह रहे हैं ना। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय का है। 35 वर्षों के तीर्थ यात्रा के बाद विदुर जी हस्तिनापुर में लौटे हैं तो विदुर जी से मिलकर महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ बहुत प्रसन्न हैं। उनका स्वागत सत्कार किए और उनसे सुख मंगल कुशल क्षेम पूछ रहे हैं समाचार। तो उसी क्रम में यह श्लोक है। इसके पहले कुछ श्लोक और हैं। महाराज युधिष्ठिर जब विदुर जी को देखे तो अत्यंत प्रसन्नता में भर कर फूले न समाये, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है ठीक है छोड़िए, यह कैसा है इस पर ध्यान मत दीजिए। जो भागवत संबंधी शब्द वर्णन किया जाएगा उसको सुनिए। यदि अच्छा माइक और अच्छा वक्ता का काम यह है कि जो कहा जाए उसी को स्पष्ट रूप में वर्णन करें। एम्पलीफायर और वक्ता एक तरह के होने चाहिए। जो अपना विचार है अपनी बातें अपना शब्द नहीं मिलाना चाहिए। से जो मैं बोल रहा हूँ उसका काम उसी को एम्पलीफाइड करना है। अब किरकार अलग से मिला रहा है उसकी गड़बड़ी है। वैसे ही अच्छा वक्ता का कार्य है कि व्यास देव जो कहे हैं उसी को प्रस्तुत करना, अलग से मिर्च मसाला नहीं मिलाना चाहिए। तो आजकल मिलावट चल रहा है इसलिए इसका दोष नहीं है। हो गया हरे कृष्ण
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज युधिष्ठिर विदुर जी से कुछ विशेष बातें बोल रहे हैं, लगभग 4-5 श्लोक में। तो यहाँ 8, 9, 10, 11 ये लगभग यही श्लोक है, 8, 9, 10, 11 चार श्लोक महाराज युधिष्ठिर की युक्ति है। यहाँ 8वें श्लोक से युधिष्ठिर उवाच, अपि स्मर्थ नो जुष्मत् पक्षाया समेधितान विपद गणान विशान न्याग्ने मोचिता यत समात्रिका। महाराज युधिष्ठिर बड़े ही आत्मीयता स्नेह में विदुर जी के व्यवहारों का स्मरण करते हुए कहते हैं कि हे चाचा जी, क्या आप हम लोगों को याद करते हैं? इतने दिनों तक हम लोगों से आप अलग रहे, आप हमारा कभी कभी याद कर लेते थे। और एक विशेष बात कहते हैं, आपको याद है, आप सब तरह से हमारी रक्षा किए, जैसे पक्षी अपने बच्चों का देखभाल करती है, जैसे अंडे का पालन करती हैं, छोटे मासूम बच्चों का पालन करती हैं, वैसे आपने हमारा पक्षपात किया। से पंख से पंख के अंदर छुपाकर अपने बच्चों का पालन करती हैं पक्षी, अंडे का पोषण करती हैं, वैसे आपने हमारा पक्षपात किया। सब तरह से आपने हमारी सहायता की, विषपान में अग्निदाह में आपने हमारा पक्ष लिया। यदि आप हमारी सहायता नहीं किए होते तो हम लोग लक्षा भवन में जलकर खाक हो गए होते। उन दिनों को याद करते हैं, इसको कहते हैं कृतज्ञता। कृतज्ञता, किए हुए उपकार को याद रखना। बहुत भयंकर पापों में कृतज्ञता एक भयंकर पाप माना जाता है। कृतज्ञता और कृतज्ञता, कृतज्ञ कहते हैं किए हुए उपकार को याद रखने वाला, उसको कहते हैं कृतज्ञ। किए को ज्ञान में रखना, इसने हमारी सहायता किया है। और कृतज्ञ कहते हैं जो किए हुए उपकार को भूल जाना, कृतज्ञ। तो बहुत जघन्य पाप जैसे आत्महत्या, गुरु पत्नी गमन, मातृपितृ हत्या, वैसे है कृतज्ञता, किसी के उपकार को भूल जाना। ये अत्यंत जघन्य पापों के अंदर आता है। तो महाराज युधिष्ठिर कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ हैं। वृंदावन में एक महात्मा, बहुत बुजुर्ग शिक्षक थे धर्म संघ के, वो कथा सुनाते थे कि एक स्वपच कुत्ता का मांस खाने वाला मरघट में कुत्ते के मांस पका रहा था खाने के लिए, और उसको कुत्ते के चमड़े से ढका था, हड़िया में बना रहा था। तब तक एक व्यक्ति उसी रास्ते से गुजरा, उसको देखकर वो ढक दिया, छुपा दिया कुछ देर तक। जब वो निकल गया तब फिर उसको उसका ढक्कन हटाया, बनाने लगा। तो एक व्यक्ति देख रहा था दूर से, तो कहा कि भाई साहब आप उसको देखकर छुपा क्यों लिए? तो वह सरपंच कहता है अगर उसकी दृष्टि हमारे भोजन पर पड़ जाती तो इसको फेंकना पड़ता, वो खाने लायक नहीं रहता, अशुद्ध हो जाता है। तो पूछा कि इसमें शुद्धता क्या है, आप कुत्ते के मांस को पका रहे हो, वो भी कोई साफ सुथरा खींचे नहीं मरघट पर, इसमें कौन सी ऐसी शुद्धता है जो नष्ट हो जाता? कहता फिर भी यह अभी हमारे खाने लायक है, लेकिन वह व्यक्ति देख देता तो ये अशुद्ध हो जाता, इसको निश्चित फेंकना पड़ता। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि वो कृतघ्न है, वो किए हुए किसी की सहायता को याद नहीं रखता है। तो ऐसे कृतघ्न के दृष्टि में दोष है, देखने मात्र से व्यक्ति अपवित्र हो जाएगा, वस्तु अपवित्र हो जाएगा। तो ये देखिए इतना कृतघ्नता का दोष है कि एक सपच भी इस बात को समझता है। तो कृतज्ञ महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि आपने हमारी सहायता किया, यदि आप हमारी सहायता नहीं किए होते तो हम लोग लक्षा भवन में जल गए होते। लक्षा भवन में जब उनको भेजा गया वर्णावर्त में एक भवन बनाकर, और यही योजना थी कि एक बार में एक माचिस लगाया जाए पूरा भवन जल जाएगा। तो विदुर जी भरी सभा में म्लेच्छ भाषा में महाराज युधिष्ठिर को संकेत किए। म्लेच्छ भाषा का अर्थ महाराज श्री और श्रील प्रभुपाद भी किए हैं इंग्लिश जो उन्होंने कहा कि बेटा जब जंगल में आग लग जाती है तो बहुत सारे जीव जंतु जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन बिल में रहने वाले चूहे बच जाते हैं, वहाँ आग नहीं पहुँच पाती है। बस इतना ही कहा और कुछ नहीं। महाराज युधिष्ठिर गए लेकिन अपने भाइयों के साथ विचार करने लगे कि चलते समय चाचा जी ने ऐसा क्यों कहा। यद्यपि अर्जुन और नकुल सहदेव आदि नहीं समझे तो उन्होंने बतलाया कि जो विदुर जी बतलाए वो यह है कि जंगल में आग लगने पर और जीव जंतु जल जाते हैं लेकिन चूहे नहीं जलते। तो इसका अर्थ यह है कि हम लोगों को कभी न कभी आग लगाया जाएगा यहाँ, लेकिन क्या चूहों के रहने लायक बिल है कहीं जहाँ हम लोग बच सकते हैं? तो देखो इस मकान के अंदर, इस भवन के अंदर कोई बिल होगा तभी चाचा जी ऐसा कहे। तो भीमसेन धरती को अपने पैरों से मार मार कर देखे कि कोई ठोस है कि कहीं ढक्कन लगा हुआ बिल है। तो बाद में एक जगह टूट गया और नीचे से ही एक सुराख बिल बनाया हुआ था जो जंगल में निकलता था। यह व्यवस्था गुप्त रूप से विदुर जी करवाए थे, भवन बनाने वाले तो नहीं जान पाए, लेकिन विदुर जी ने एक व्यवस्था दिया था, जंगल से एक सुराख उस भवन तक आता था। तो भीमसेन के पैरों के धमक से जब वो बिल खुला तो घुस कर देखे कि वो बाहर जा रहा है, तो उसी रास्ते से लोग निकल गए, नहीं जल पाए। तो आखिर उसमें विदुर जी की सहायता ही थी ना, उसको याद कर रहे हैं। तो इसके साथ और भी सारी बातें जिसको आप पढ़ चुके हैं, कथाएं हो चुकी है। कया वृत्त्या वर्तितम वश्य चरद भी वह, कया वृत्त्या वर्तितम वह चरद भी क्षितिमंडलम तीर्थानी क्षेत्र मुख्यानी सेवितानी भूतले। पूछ रहे हैं कि आप पृथ्वी पर विचरण करते हुए कैसे जीविका चलाते थे चाचा जी? दो चार दिन के टूर में बहुत प्लानिंग करना पड़ता है, किस गेस्ट हाउस में रुकेंगे, क्या खाएंगे, ट्रेवलिंग के लिए कौन सा साधन होगा, ट्रेन होगा कि बस कि कार, क्या क्या प्लान चल रहा है ना। लेकिन विदुर जी 35 वर्ष तीर्थ यात्रा में रहे, क्या खाए, कैसे निर्वाह हो रहा था, और तीर्थानी क्षेत्र मुख्यानी किन मुख्य तीर्थों में आप गए, सेवितानी भूतले जो इस पृथ्वी पर सेवन करने लायक जगह है, पवित्र जगह है जहाँ जाना ही चाहिए। ऐसा किन किन पवित्र स्थलों और तीर्थ स्थानों का सेवन आपने किया, कहाँ कहाँ आप गए, 35 वर्ष कैसे गुजारे, इसको पूछ रहे हैं। तो पृथ्वी के ऊपर रहने वाले तीर्थ स्थान जो व्यक्ति को पवित्र करता है, वहाँ पवित्र कुंड होते हैं, नदियाँ होती हैं और भगवत श्री विग्रह होते हैं जिनके दर्शन करने से, स्नान करने से व्यक्ति का पाप समाप्त होता है। इसलिए सेवन करना चाहिए, जाना चाहिए। इसके साथ एक विशेष बात बोलते हैं कि उन तीर्थों की पवित्रता वहाँ के नदियों और श्री विग्रहों में तो है ही, लेकिन वह तीर्थ भी कभी कभी अपवित्र हो जाता है जब असद लोगों के द्वारा वो सेवन होने लगता है। जब दुष्ट प्रवृत्ति के लोग वहाँ अपना दुकान लगाते हैं, वे लोग भी निवास करते हैं, वे अपना दुष्टता का व्यापार फैलाते हैं, तो उसका भी असर उस तीर्थ पर हो जाता है। इसीलिए पृथ्वी पर आने के पहले गंगा घबरा रही थी। भगीरथ जी से दो बातें गंगा जी ने कहा कि बेटा, मैं स्वर्ग से जब पृथ्वी पर उतरूंगी तो मेरे तेज बेग को पृथ्वी नहीं झेल पाएगी और मैं उसको छेद करके फोड़ कर रसातल में चली जाऊंगी, पताल में, तो पृथ्वी वासियों को मेरे जल का कोई लाभ ही नहीं मिल पाएगा। कहीं भी गिरूं, चाहे हिमालय के ऊपर भी गिरूं, तो वह चूर हो जाएगा, टूट जाएगा और मैं नीचे चली जाऊंगी, तो फिर तुम्हारे पूर्वजों का तो उद्धार नहीं हो पाएगा। एक समस्या है, मेरे बेग को कौन धारण करेगा, पहली जिज्ञासा। और दूसरी कि जब मैं अनवरत बहने लगूंगी तो अपने पाप को मिटाने वाले पापी लोग मुझ में स्नान करेंगे और इस तरह से पापियों के स्नान करने से मैं दूषिता हो जाऊंगी, तो मेरे इस दोष को कौन शुद्ध करेगा, है ना। केवल पापी पापी नहाएंगे तो फिर तो हम में भी वो दोष आ जाएगा। तो भागीरथ जी ने, भागीरथी जी ने गंगा को बताया। पहला, दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले देते हैं कि हे भगवती गंगे, केवल आप में पापी ही नहीं नहाएंगे, जो अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए हैं ऐसे वैष्णव जन भी नहाएंगे, क्योंकि आप विष्णु पादोदक हैं, भगवान के चरणों को धोकर निकल रही हैं, तो भगवान के चरण से आपका संबंध होने के कारण वैष्णव जन के द्वारा आप सेविता होंगी, आपका सेवन किया जाएगा। तो ऐसे विरक्त महात्मा जो अपना सब कुछ त्याग कर भगवान के चरणों में लगे हैं, वे जब स्नान करेंगे तो आपका पाप धुल जाएगा। उनको, उनके ऊपर तो कोई पाप नहीं है, फिर भी वो सेवन करेंगे तो उनके नहाने से आप पवित्र हो जाओगी, इसलिए इसकी चिंता मत करो, निश्चित नहाएंगे। उनको कहना नहीं पड़ेगा, वो नहाएंगे ही, क्योंकि आप भगवान विष्णु के चरण को स्पर्श करके निकल रही हो और आपके बेग को धारण करने के लिए मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूँगा। जब जब इस पृथ्वी पर संकट पड़ता है तो भगवान शिव सहायता करते हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, वो धारण कर सकते हैं। तो गंगा जी कही ठीक है। तो भगीरथ जी शिव जी को मनाने के लिए अलग से एक तपस्या किए। जब शिव जी प्रकट हुए तो कहे, बेटा बोलो क्या चाहिए। तो कहे, गंगा की धार स्वर्ग से पृथ्वी पर आने वाली है, उनके बेग को आप धारण कीजिए। तो कहे, ओहो, ये पहले ही बता देना चाहिए, इतना तपस्या करने की क्या जरूरत है, अवश्य धारण करूंगा, कह दो गंगा को आने के लिए, अपना जटा फैलाए। खुश हो गए शिव जी। और वो गंगा की धार जब भगवान शिव के जटाओं पर उतरी कैलाश में, हिमालय में, तो कई महीनों तक उसी जटा में घूमती रह गई। भगीरथ जी कहे, प्रभु मैं आपके जटाओं की शोभा बढ़ाने के लिए गंगा को नहीं लाया हूँ, मैं अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा लाया हूँ, आप के जटा में ही घूम रही हैं। तो शिव जी कृपा करके गंगोत्री से थोड़ा सा धार दिए, जिसको लेकर भगीरथ आगे आगे चले और ले जाकर भगवान कपिल के आश्रम में अपने जले हुए पितरों का उद्धार किए। तो ये सब कथाएं हैं। तो वहाँ भी एक बात सिद्ध हुई कि तीर्थ को भी तीर्थ करते हैं, तीर्थ की अपवित्रता को भी शुद्ध करते हैं भक्त लोग, यही बात कह रहे हैं महाराज युधिष्ठिर। भवत विधा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थे नगद आभृता। आप तीर्थों में घूमते हैं, लेकिन आप जैसे भगवान के प्रिय भक्त जो अपने हृदय में भगवान को लिए हुए घूमते हैं, तो पवित्रता तो भगवान के चरणों में है, उसी भगवान को धारण करके चलने वाले भक्त तीर्थों को भी महातीर्थ करते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों की तीर्थता पवित्रता तो आप जैसे भक्तों में है। वो घूमते हैं अपने को पवित्र करने के लिए, लेकिन होता है तीर्थ पवित्र उनसे। तो इसकी व्याख्या आप सुन चुके हैं। इसके बाद आज है अपि न सुहृदस्तात बांधवा कृष्ण देवता दृष्टा सुता व जदवा स्वपुरियाम सुखमासते। हे चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा के क्रम में द्वारिका जरूर गए होंगे। उस पवित्र स्थान में रहने वाले जदुवंशी हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे सुहृद हैं, जो नित्य कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। कृष्ण देवता वे हमारे बंधु हैं, हमारे सुहृद हैं, और कृष्ण उनके इष्ट देव हैं। महाराज युधिष्ठिर एक संकेत दे रहे हैं कि संबंध मेरा ऐसे नहीं है, जिनका संबंध कृष्ण से है वह मेरा संबंधी है। कृष्ण देवता बांधवा कहते हैं, कृष्ण जिनके देवता हैं, जिनके इष्ट हैं, पूज्य हैं, वह बंधु जन, वो जादव जन ठीक से है ना, कुशल से है ना। दृष्टा सुता व जदवह, आप उनके विषय में सुने होंगे या द्वारिका गए होंगे तो देखे होंगे। आप जादों से मिले, जादों लोग ठीक से है ना, उनके विषय में सुने होंगे। स्वपुरियाम सुखम आसते, वो अपने पुरी में, अपने निवास स्थान द्वारिका में सुख से है ना। इस प्रकार प्रश्न कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ विशिष्ट शब्द है कृष्ण देवता, ये महत्वपूर्ण शब्द है। इसका अर्थ है कि सदैव कृष्ण की सेवा में जादव लोग लगे हुए थे। जादव और पांडव दोनों वास्तव में कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण परायण थे, उनके विचार में मग्न रहते थे। तो महाराज युधिष्ठिर विदुर जी से प्रश्न कर रहे हैं कि आप भी कम नहीं हैं, आप भी कृष्ण देवता हैं, आपके भी इष्ट कृष्ण हैं। आप घर त्याग करके पूर्णतया कृष्ण में जीवन समर्पित किया है, आप मंत्री पद को त्याग करके इस राजनीति से उपरांत होकर आप भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, तो आप कृपा करके बताइए कि जादव लोग कुशल से हैं, आप वहाँ गए होंगे या उनके विषय में कहीं से आपको न्यूज मिला होगा, जो भी आप बतलाइए। शुद्ध भक्त चाहे घर में रहे या घर से बाहर रहे, प्रभुपाद कहते हैं ये कहीं उसका व्यवसाय है, वो कृष्ण के विषय में सोचता है, कृष्ण के लिए प्लानिंग करता है, कृष्ण की सेवा करता है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में निमग्न रहता है। यद्यपि कंस, जरासंध, शिशुपाल जैसे अन्य असुर भी कृष्ण के विचार में ही निमग्न रहते थे, लेकिन प्रतिकूल भाव से, कृष्ण को अपना शत्रु मानकर। चाहे विचार प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, भावना तो कृष्ण भावना ही कही जाएगी। वे लोग भी कृष्ण भावना भावित थे, हमेशा कृष्ण के विषय में सोचते रहते थे। कंस आदि सप्तम स्कंद में देवर्षि नारद कहते हैं, चाहे किसी भी प्रकार से चित कृष्ण में है तो वह कृष्ण को प्राप्त करेगा। शिष्यपाल की सदगति पर महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया था। राजसूय सभा में जब भगवान के द्वारा शिष्यपाल मारा गया और उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकली और वह आकाश में जाकर फिर लौट करके भगवान के चरणों में निमग्न हो गई, तो उस महाराज युधिष्ठिर जिज्ञासा किए हैं सप्तम स्कंद के प्रारंभ में। तो कर्ण और शिष्यपाल को शुद्ध भक्तों का पद प्राप्त नहीं हो सकता, जो स्थान पांडवों का, जादवों का और विदुर जी का है, वह स्थान तो उसे नहीं प्राप्त हो सकता, फिर भी वह है कृष्ण भावना भावित, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं है, अनुकूल भाव से। कहाँ हम लोग पढ़े थे, ध्यान नहीं, झगड़ा ऐसा करो कि राम को आए,
राम मिल जाए, राधा
कुंड में लिखा था, ऐसा झगड़ो कि राम को आना पड़े, लड़ाई करना है तो राम को प्रकट कराने वाला लड़ाई करो। महाराज युधिष्ठिर भी भगवान कृष्ण तथा उनके द्वारका के पार्षदों के विचार में निमग्न रहा करते थे, अन्यथा वे विदुर जी से इनके विषय में न पूछते। अतएव महाराज युधिष्ठिर विश्व के राज के मामलों में लगे रहकर भी विदुर जी के समान भक्ति के पद पर स्थिर थे। अभी आगे के अध्यायों में इसके बाद परीक्षित महाराज के जन्म की जहाँ कथा है, वहाँ महाराज युधिष्ठिर के विचारों का वर्णन किया गया है, किस लेवल के महाराज युधिष्ठिर, किसमें है मूल भागवत जी। महाराज युधिष्ठिर बहुत उन्नत भक्त हैं, साक्षात भगवत पार्षद हैं। परीक्षित महाराज के चरित्र कहा है, यह 12 में है। यहाँ इनके विषय में लिखा गया है, सूत गोस्वामी कहते हैं, संपदः कर्तव्य लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बू दीपाधिपत्यम च जसस्य त्रिदिवं गतम किमते कामा सुरस्प्रहा मुकुंद मनसो द्विजा अधि जरहु मुदम राज्ञ क्षुदितस्य जथेतरे। 2 श्लोक में 5 और 6 श्लोक 12वां अध्याय का, इसमें सूत गोस्वामी कहते हैं, संपदः क्रतो लोका महिषी भ्रातरो मही। महाराज युधिष्ठिर की संपत्ति बहुत बड़ी थी, स्वर्ग के समान इनको वैभव प्राप्त हुआ था, संपूर्ण भूमंडल के राजा थे और यज्ञ करके इस इंद्र जैसा ऐश्वर्य प्राप्त किए थे, 3 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। और महिषी भ्रातरह मही, इनकी महिषी महारानी द्रौपदी और भाई थे भीमसेन और अर्जुन जैसे विश्व के सबसे बड़े योद्धा। पृथ्वी का राज जम्बू द्वीप का आधिपत्य और तीनों लोक में गया हुआ जस, सब कुछ भरा हुआ था, लेकिन ये सब राज वैभव महाराज युधिष्ठिर को 1 सेकंड के लिए भी प्रसन्नता नहीं प्राप्त कर पाया, नहीं दे पाया। महाराज युधिष्ठिर का मन इन सब राज वैभव सुख समृद्धि और जय हो राजाधिराज महाराज युधिष्ठिर, उनको माला अर्पण करना, प्रणाम करना, चामर डुलाना, ये सब उनको थोड़ा सा भी स्पर्श न, सुरस प्राहा देवताओं के भी स्पृहा का वैभव था महाराज युधिष्ठिर को। देवता लोग भी चाहते थे कि ऐसा मुझे राज्य प्राप्त हो। देवता लोग क्यों चाहते थे, क्योंकि जो महाराज युधिष्ठिर के राज्य सभा में सम्मानित लोग उपस्थित होते थे, वैसा इंद्र के राज्य में नहीं। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है, महाराज युधिष्ठिर का जब दरबार लगता तो उनके सामने सबसे ऊंचे कुर्सी पर, आसन पर महाराज युधिष्ठिर बैठते और उनके सामने इंद्र, वरुण, कुबेर, जमराज, ये सब देवता आकर बैठते थे, नीचे ब्रह्मा और शिव आदि। जब महाराज युधिष्ठिर निमंत्रित कर देते तो हवन के मंत्रों से नहीं उनको दिया जाता था, प्रकट होकर के अपना भाग लेते थे। उनके तीनों अश्वमेध जग में देवता लोग प्रकट हुए और भगवान कृष्ण उनको सबसे ऊंचे आसन पर बिठा करके और सामने खड़ा होकर सर्वाराध्य अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड श्रील प्रभुपाद के शब्दों में हाथ जोड़ करके उनके चरण रखने की कुर्सी को, उनके खड़ाओं को प्रणाम करते भगवान और महाराज के सामने खड़ा होकर कहते, महाराज मुझ सेवक के लिए आपको क्या आज्ञा है। जहाँ शिव ब्रह्मा इंद्र वरुण तमाशा देखते थे और स्वयं सुप्रीम पर्सनालिटी महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता था, क्या ऐसा वैभव इंद्र को प्राप्त है? प्राप्त है जिनका सेवक बनकर, जिनका रथ का सारथ किए, स्वयं युद्ध में भाग लेकर विजय दिलाए, बड़े गर्व के साथ कहते थे यह राज्य मेरा है। इसके लिए भगवान ने युद्ध लड़ा, उनके घोड़ों की सेवा किया, जब तीर लगते थे बाण तो मलहम पट्टी रात को करते थे, अर्जुन को पकड़ करके उठाते नीचे उतारते थे और उठा करके रथ पर रखते थे, इस तरह से सेवकाई किया पांडवों का। ऐसा वैभव इंद्र को प्राप्त नहीं है। तो सूरस प्रहा देवता लोग भी तरस जाते थे उस वैभव को देखकर, लेकिन मुकुंद मनसो द्विजा, हे ब्राह्मणों, महाराज युधिष्ठिर का मन भगवान मुकुंद में लगा हुआ था। भले उनकी सेवा उनकी पूजा भगवान करते थे, पैर छूकर प्रणाम करते थे महाराज युधिष्ठिर का, दूर से सलामी नहीं, पैर छूते थे प्रणाम, और महाराज युधिष्ठिर छाती से लगाकर आशीर्वाद देते, और भीमसेन हमेशा आलिंगन पूर्वक मिलते थे, और अर्जुन नकुल सहदेव ये तीनों भगवान से छोटे थे इसलिए उनका चरण छूते थे, कि महाराज युधिष्ठिर का चरण छूकर भगवान कृष्ण प्रणाम करते थे। तो कोई बड़ा व्यक्ति किसी का चरण छू रहा है तो उनसे छोटे सबको समझ जाना चाहिए कि हमसे भी बड़ा है। तो जहाँ भगवान चरण छू रहे हैं वहाँ ब्रह्मा और शिव वरुण कुबेर आदि तो समझ ही जाते थे कि महाराज का पद कितना बड़ा है। तो सूरस प्रहा राज प्राप्त था, देवताओं की स्पृहा का विषय था हस्तिनापुर का राज सिंहासन, वह मुकुंद के चरणों में मन लगाए हुए थे, इसलिए उनको राज वैभव वैसे अच्छा नहीं लगता था जैसे खूब भूखे प्यासे व्यक्ति को खूब प्यास लगा हो, खूब भूख लगा हो, पानी पानी की जरूरत है, और वो बेचारा प्यासा हुआ भूखा व्यक्ति पानी और रोटी मांग रहा है, और उसको बैठा दीजिए कुर्सी पर, कहीं रुकिए अभी आपकी आरती उतारना है, अभी चंदन लगाना है, अभी माला ला रहे हैं माला पहनाएंगे, अभी आरती करेंगे, अब कचरण धोएंगे, बहुत देर तक डेढ़ घंटा उसी कर्म में लगा दिया, तो उसको आरती और चामर अच्छा नहीं लगेगा, हटाओ पानी दो, तुरंत पानी मांगेगा, लेकिन रुकिए रुकिए अभी आपका अर्चन करना है। तो जैसे भूखे प्यासे व्यक्ति को माला श्रक चंदन अच्छा नहीं लगता, वैसे मुकुंद में मन गया हुआ महाराज युधिष्ठिर को राज वैभव अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे उन्नत भक्त थे महाराज युधिष्ठिर। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वे एक लेवल के थे युधिष्ठिर और विदुर, कह रहे हैं इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्संवर्णयत् यथानुभूतम क्रमशो बिना यदु कुलक्षयम्। यहाँ तक 11 तक तो महाराज युधिष्ठिर के वक्तव्य को व्यक्त किया गया, 8, 9, 10, 11 चार श्लोकों में। अब यहाँ 12वां श्लोक में सुत गोस्वामी कह रहे हैं इति युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्संवर्णयत् यथानुभूतम क्रमशो बिना जदु कुलक्षयम्। तो महाराज युधिष्ठिर के द्वारा इस प्रकार जब विदुर जी पूछे गए, विदुर जी से पूछा गया, तो विदुर जी सब कुछ सुना दिए जो अपने तीर्थ यात्रा में अनुभव किए थे, जहाँ जहाँ घूमे थे, जैसा सुख दुख की अनुभूति हुई वो सबको बतलाए, कहाँ कहाँ गए, कैसे रहे, सब सारा अनुभव सुना दिए। एक को छोड़कर बिना जदु कुलक्षयम्, जदकुल के विनाश की कथा विदुर जी नहीं कहे। जादवों का विनाश हो चुका है, जादवों का समाचार पूछ रहे हैं, जादव एक भी बचे नहीं, भगवान श्री कृष्ण अपने नित्य लोक में चले गए हैं, यह सूचना विदुर को प्राप्त है। आपको तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय से ही कथा है, उसको जानना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, कि कौरवों के दुर्व्यवहार से विदुर जी घर छोड़े थे। 35 वर्षों तक तीर्थ यात्रा करते हुए जब ये वृंदावन में जमुना के तट पर पहुंचे तो वहाँ उद्धव जी को देखे, उद्धव जी से मिलकर विदुर जी बहुत सारे प्रश्न किए हैं, तो उन्हीं प्रश्न के उत्तर के क्रम में विदुर जी को पता चला कि जादवों का विनाश हो चुका है और पांडव और कौरवों के बीच युद्ध हो चुका है। महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने नित्य लोक में पधार गए हैं। परस्पर जादव आपस में लड़कर सब नित्य धाम को चले गए हैं। ये सब कथाएं उद्धव जी सुना चुके हैं और उसी क्रम में उद्धव ने यह भी बताया, कभी कभी भागवत पढ़ते हैं लेकिन भागवत के विद्यार्थियों को भी पता नहीं चलता कथा किधर से किधर निकल गई, जो पढ़े उसको भी भूल गए, आगे पढ़ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है क्यों कहाँ से आ गया। तो इसलिए विशेष ध्यान से पढ़ना चाहिए और विशेष ध्यान से पढ़ने से ज़्यादा विशेष ध्यान से सुनना चाहिए। जब कोई प्रमाणिक स्रोत से सुनने को अवसर मिल जाए तो ध्यान से सुनना चाहिए। तो विदुर जी कथा जिज्ञासा कर रहे हैं उद्धव जी से कि अच्छा भगवान चले गए। हाँ, यह सुनकर बहुत दुखी हुए, लेकिन एक खुशी का संवाद यह मिला कि जाते जाते भगवान ने अपने विषय में जीवों के भगवान के प्रति कर्तव्य के विषय में बड़ा सुंदर उपदेश किया और वह उपदेश मुझको सुनने को मिला और भगवान के आदेश से मैं वो उपदेश ग्रहण किया और अब बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ। तब विदुर जी जिज्ञासा की अच्छा चलते समय भगवान ने अपने विषय में उपदेश किया, वो है भागवत, तो आप कृपा करके उद्धव मुझे भी सुनाओ। तो विदुर जी ने एक और अद्भुत सुखद संवाद सुनाया। वो कहे कि ये आपको मैं नहीं सुनाऊंगा, आपको सुनाने के लिए मैत्रेय मुनि को नियुक्त किए हैं भगवान। जिस समय भगवान भागवत का प्रवचन कर रहे थे उस समय दो श्रोता थे, मैं और मैत्रेय मुनि। तो मैत्रेय मुनि को कथा के लास्ट में भगवान ने आदेश दिया है कि आप यह भागवत की कथा विदुर जी को अवश्य सुना देना, उनकी एक ड्यूटी है, वो आपको सुनाएंगे। तो मैत्रेय मुनि कहाँ है? कहते इस समय वे हरिद्वार में है, आनंद घाट में, सप्तर्षि घाट में वे निवास कर रहे हैं, आप उनसे अवश्य मिलिए। यद्यपि मैं भी सुना सकता हूँ लेकिन भगवान का आदेश है इसलिए आप मैत्रेय मुनि से सुनिए। यह सुनकर विदुर जी बेहोश हो गए कि पूरे जगत में मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसको भगवान स्पेशल आदेश दिए। अनुमान भी नहीं था कि भगवान के हृदय में विदुर जी का इतना बड़ा स्थान है। तो विदुर जी बहुत प्रसन्न हुए, उस प्रसन्नता में कुछ क्षण बेहोश रहे, फिर उस यमुना तट से दोनों महापुरुष गंगा तट की ओर चले, एक गए बद्रिकाश्रम और एक रह गए हरिद्वार। तो हरिद्वार में मैत्री मुनि से कथा सुनना प्रारंभ किए, जो तीसरे स्कंद के पांचवें अध्याय से प्रारंभ होता है। चार अध्याय में तो विदुर उद्धव संवाद है और पांचवें अध्याय में मैत्री मुनि के चरणों में विदुर जी ने जिज्ञासा किया है और मैत्री मुनि उत्तर देना प्रारंभ किए। कहाँ तक? पूरा तीसरा स्कंद, पूरा चौथा स्कंद, पुरंजनोपाख्यान, महाराज प्राचीन बरही के उद्धार के कथा चौथे स्कंद के लास्ट में जब मैत्रेय मुनि ने किया तब विदुर जी उनके चरणों में हाथ जोड़ लिए। आप चौथे स्कंद के लास्ट में पढ़िए, वहाँ विदुर जी कहते हैं गुरुदेव कथा को यहीं स्टॉप किया जाए। क्यों? अब तो सुना रहे हैं, सुनो, नहीं रुकिए, मैं अब हस्तिनापुर जाऊँगा। अरे इतनी कथा सुनकर हस्तिनापुर क्या करने जाओगे? क्योंकि वहाँ मेरा अंधा भाई घर गृहस्थी में पड़ा हुआ व्यामोह में मर रहा है। जब प्राचीन बरही जैसे कर्म जड़ का उद्धार देवर्षि नारद ने पुरंजनोपाख्यान सुनाकर निकाल दिया और वे अपने पुत्रों के लौटने का भी इंतजार नहीं किया, प्राचीन बरही अपने प्रचेता पुत्र थे 10 प्रचेतागण, उनको तपस्या से लौटने का भी इंतजार नहीं किया, घर छोड़कर चला गया। तो इस पुरंजनोपाख्यान आदि कथाओं को मैं अपने भाई को सुनाऊंगा और हो सकता है कि मैं उसको प्रीच करके बाहर निकाल दूं तो मैं उसके ऋण से उऋण हो जाऊंगा, क्योंकि हमारे भाइयों में धृतराष्ट्र बड़े थे, बड़े स्नेह से हमारा पालन किए हैं। यद्यपि वो अपने पुत्रों का पक्ष लेकर भगवान तक का अपमान किया है। लेकिन विदुर की कृतज्ञता देखिए, विदुर जी धृतराष्ट्र के सामने अपमानित होकर घर छोड़े थे, लेकिन महापुरुषों की एक विशेषता है, किसी के बुरे व्यवहारों को अपने दिमाग में स्थान नहीं देते, किसी की अच्छाई को ही केवल ध्यान देते हैं। जो भगवान का विशेषता है वही भक्तों की विशेषता है। रहती न प्रभु चित चूक की एक ही करत सुरती सब बार ही एक ही। भगवान भक्तों के गलती को ध्यान नहीं देते, अगर ध्यान देते तो भगवद गीता में यह नहीं कहते अपिचेत सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हो ही सह। चाहे वह दुष्ट बदमाश अपने आदत से लाचार कुछ भी गड़बड़ी कर दे, लेकिन मेरा भजन कर रहा है तो वह साधु ही है, उसे साधु ही मानना चाहिए। भगवान पैरवी कर रहे हैं, गलत प्रवृत्ति के भक्तों का पक्ष ले रहे हैं। अच्छा करने वाला तो अच्छा है ही, कुछ गड़बड़ करने वाले का पक्ष भी भगवान ले रहे हैं। ये है उनका सौहार्द, ये है उनका कृतज्ञता। वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि एक बार कोई व्यक्ति मेरे चरणों में प्रणाम करके कह दे कि हे श्री राम मैं आपका हूँ, तो उसको मैं अभय कर देता हूँ। सक्री देव प्रपन्नो ज तवा स्मृति ज याचते अभयम सर्वदा तस्मय ददा मे तद्व्रतम मम। तो ऐसे प्रभु का जो विशेषता है वो भक्तों की भी विशेषता है। विदुर लौटे और लौट करके अपने भाई को उपदेश किए, वह कथा प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में वर्णन है, पहले ही आ गया है। भागवत में इधर उधर उल्टा क्रम है, इस इतिहास नहीं है कि लिंक मिलेगा आपको, इसमें केवल शास्त्रों का मैसेज दिया गया है जो जीवों के हितकारी है। पुराण मैसेज देता है और इतिहास लिंक प्रस्तुत करता है। तो लिंक खोजना है तो महाभारत में पढ़िए, और मैसेज जो आपको सिद्धांत देना है, संदेश देना है, वो भागवत में है। क्या संदेश है हमारे लिए? तो यहाँ सब कुछ सुनाए, इनको पता है कि जदकुल का विनाश हो चुका है। मैत्रेय मुनि से कथा सुनने के बाद हस्तिनापुर लौटे हैं, बहुत विलंब। तो आप कहें कि इतना लंबा टाइम तक महाराज युधिष्ठिर को कोई सूचना नहीं मिली थी? ना, उस समय मोबाइल फोन नहीं था। बहुत दिनों तक सूचना नहीं मिलने के कारण महाराज युधिष्ठिर अधीर थे और अपने भाई अर्जुन को भेजे थे द्वारिका, लेकिन अर्जुन 5 महीना द्वारिका में रह गए। 5 महीना के बाद लौटे। कब लौटे? जब विदुर जी धृतराष्ट्र को निकाल कर घर से चले गए तब लौटे, उसी दिन लौट गए। जब वो चले गए तब तो सारी समाचार सुना दिए, लेकिन जादवों के विनाश का दुखद संवाद नहीं सुनाए। यहाँ एक विशेष शिक्षा मिलती है कि अगर कुछ कहने की बड़ी कौतूहल है मन में, किसी व्यक्ति से कुछ कहना चाहते हैं बिना पूछे, तो सुखद संवाद देना चाहिए, दुखद नहीं। अथवा कृष्ण भावना को विकसित करने वाली बातें करना चाहिए, हरास करने वाली नहीं। कभी कभी हमारे इस्कॉन में भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, बहुत सीनियर, बहुत गंभीर, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ कुछ घटनाएं हो जाती हैं जो अपने भक्ति के पथ से डिवेट हो जाता है, तो बड़ा विस्तार से उस कथा को नहीं सुनना चाहिए, इससे हमारे भक्ति में ह्रास होता है। अगर अचानक कोई सुना भी दिया तो बस वहीं चुप, बस बस, ज़्यादा नहीं। कैसे कैसे डिविएशन हुआ यह सुनने वाली कथा नहीं है, कैसे कैसे प्रगति हुआ यह सुनने वाली कथा है। व्यक्ति दासी पुत्र से भगवत पार्षद हो सकता है, ब्रह्मा का पुत्र, यह कथा सुनने लायक है, यह सुनने लायक है। कैसे मृग शरीर से फिर भगवत पार्षद हो गए, यह सुनने लायक कथा है। किस तरह से अपने कृष्ण भावना को बचाए रखे, ऐसा किसी के डिविएशन और कैसे कैसे गिरा, क्या हुआ क्या हुआ, इसको नहीं। यह दुखद संवाद है, सुखद नहीं। या किसी की मृत्यु, किसी सुहृद की मृत्यु की सूचना नहीं देना चाहिए, वो तो अपने आप आ ही जाता है ना। आप तत्काल वो व्यक्ति हंस हंस कर बात कर रहा है तब तक बतला दीजिए कि उसकी मृत्यु हो गई, तो आपके सामने ही वो दुखी हो जाएगा। यह देखने लायक सीन है, इसलिए यह नहीं कहना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर जितना दिन भी रहे कोई चर्चा नहीं की, उनको पता था कि कुछ लेट ही मिलेगा लेकिन मिलेगा संवाद इसको। अर्जुन गया है तो द्वारिका से लौटेगा। अर्जुन ऐसे विषम परिस्थिति में फंस गए कि जहाँ केवल द्वारिका में स्त्रियां ही स्त्रियां बच गई, बाकी पुरुष लोग तो जाकर प्रभास में लड़ाई करके मर चुके थे। तो स्त्रियों के साथ डीलिंग करना अर्जुन के लिए बहुत भारी पड़ गया। कैसे करना है, तब तक उनको संवाद मिला कि इन स्त्रियों को लेकर हस्तिनापुर जाओ, भगवान सूचना दिए थे दारुक से। और उस पत्र को पढ़कर अर्जुन बहुत गंभीर हो गए, अधीर हो गए, लेकिन भगवत गीता का ज्ञान स्मरण करके अपने को धैर्य धारण किए। बेचारे किसी तरह लेकर आ रहे थे तो रास्ते में ही कोल भील गोप साधारण लाठी डंडा से उनको हरा दिए, छीन लिए सारी स्त्रियों को। गांडीव धारी अर्जुन विश्व विजेता अजय विजेता अभी युद्ध में कभी हारा नहीं, वह साधारण लोगों के द्वारा हार गया। मानसिक स्थिति का बहुत महत्व होता है। व्यक्ति के मन में उत्साह है तो साधारण व्यक्ति भी बलवान दिखता है। भगवान साथ में रथ पर हैं तो अर्जुन का सामना इंद्र भी नहीं कर पाए, भगवान शिव भी नहीं कर पाए। आपको पता है महाभारत की कथाएं, भगवान शिव को भी अरेस्ट कर लिए थे अर्जुन, बांध दिए थे बिल्कुल। तब शिव जी सोचे कि बांध तो दिया, अरेस्ट तो कर ही लिया, कहीं दो चार तमाचा लगा न दे, इसलिए तुरंत प्रकट हो गए। तब शिव जी को देखकर अर्जुन कहे प्रभु आप, हाँ किरात अर्जुनियम वर्णन है, किरात वेश में आए थे, कालिदास जी लिखे हैं अलग से ग्रंथ किरात अर्जुनियम। तो किरात वेश में भगवान शिव को अरेस्ट कर लिए अर्जुन, खांडव वन को जलाने में इंद्र को अरेस्ट कर लिए। भगवान के आदेश से एक खांडव वन जला रहे थे अग्निदेव के लिए भोजन, और उसी में मय दानव छिपा हुआ था। तो भगवान सोचे कि एक पथ दो कार्य, उस समय बहुत गायें थी, घी था, बहुत लोग हवन करते थे गाय के घी से, इसलिए अग्निदेव का पेट बड़ा चिकना हो गया, कब्ज हो गया था। तो अग्निदेव भगवान से प्रार्थना किए कि कुछ हमें औषधि चाहिए, बहुत घी खाना पड़ा है। तब क्या औषधि है, तो रूखा सूखा काट कूस जंगल। तो कहे खांडव वन को जलाइए खाइए देखते हैं। अर्जुन को कहे कि रक्षा कीजिए, इनको जलने दीजिए। अर्जुन को भी पता नहीं है कि खांडव वन क्यों जला रहे हो, इंद्र का प्रिय वन था। तो अग्निदेव को दे दिए खांडव वन जलाने को, और उसमें छिप कर आता था मैदानव, इतना घोर वन था कि कोई खोज ही नहीं पाता, उसी में रहता था। जब पूरा वन जलने लगा तो खांडव वन के दाह से एकदम संतप्त होकर मैं निकला बाहर मैदानव, और निकल करके सीधे अर्जुन के चरणों में गिर पड़ा कि अब तो मार डालेंगे। तो अर्जुन शरणागत मैदानव की रक्षा किए, और मैदानव प्रसन्न होकर के उनको बहुत सारा गिफ्ट दिया, जिसमें राजस्व सभा के अंदर बनाई गई वो सभा वही बनाया था जो विचित्र था। ये सब कथाएं हैं महाभारत की। तो हम इसलिए कह दिए कि जदुकुलक्षयम, बिना जदुकुलक्षयम जदुकुल के विनाश की कथा नहीं कहे, ये बाद में पता चला अर्जुन के द्वारा। तो नन्व प्रियम दुष्विषहम नृणाम स्वयं उपस्थितम ना वेदयत स करुणो दुखितान दस्तुमक्षम। यहाँ सुत गोस्वामी कहते हैं कि महात्मा विदुर परम करुण थे, इसलिए पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने अप्रिय घटना नहीं कहा, नहीं बताए, क्योंकि जो अपने आप पता चलने वाला है उसको कहने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, बहुत उत्सुकता दिखाना चाहिए तो कृष्ण कथा कहने में या भक्ति बढ़ाने वाली बातें कहने में। एक विद्वान ने तो कहा है कि दुनिया का झूठ सांच अध्यात्म में नहीं चलता है, यहाँ जो व्यवहार में झूठ और सच की बातें हैं वो अध्यात्म में अलग उसका हिसाब है। मतलब यह है कि जिन बातों के कहने से भक्ति का ह्रास हो झूठ, और जिन बातों को कहने से भक्ति में विकास हो सत्य, यह परिभाषा है। लाख झूठ बोलकर अगर किसी व्यक्ति की भक्ति में उन्नति हो जाए तो वही सत्य है, और किसी सूक्ष्म झूठ को सत्य को कहने से अगर किसी के भक्ति का ह्रास होता है तो महाझूठ है, उसकी जरूरत ही नहीं है कहने की। क्या जरूरत है, कहे बेचारे ह्रासित हो जाते हैं भक्त लोग, अरे जब उनका ऐसे हो गया तो हमें क्या है, लो गया काम से, निराशा हो जाती है भक्तों में। ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। और धीरे धीरे जब बिगड़ता हुआ आता है तो उतना असरदार नहीं होता है, बहुत दिनों के बाद वो बातें धीरे धीरे शांत हो जाती है। इसलिए ताजा खबर कुछ दुर्घटना का हो तो इसको नहीं कहना चाहिए, कहने में उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। इसके बाद अब आगे किस प्रकार अपने व्यवहार में महाराज युधिष्ठिर के व्यवहारों से संतुष्ट होकर विदुर जी कुछ दिन रहे, वे चाहते थे कि रुके चाचा जी रुके। चाचा जी के व्यवहार से युधिष्ठिर को पता ही नहीं चला, वो जानते थे कि रहेंगे, लेकिन उनका तो लक्ष्य मछली के आंख पर था और कुछ दिखता ही नहीं था। जब ट्रेनिंग काल में द्रोणाचार्य जी पूछे अर्जुन से कि तुमको क्या दिख रही है ऊपर, तो कहे कि आंख मछली का बस पास, जिसको पंख दिख रहा है वो तो पंख पर बाण मारेगा, तो आंख दिख गया। ऐसे इनका लक्ष्य था धृतराष्ट्र को निकालना, वहां का राज वैभव सोफा सेट एसी रूम से प्रभावित नहीं थे, इससे वो प्रभावित नहीं थे, लेकिन महाराज को संकेत भी नहीं मिल पाया कि ऐसी घटना हो जाएगी। बाद में एकांत पाकर धृतराष्ट्र को क्लास लगाए हैं विदुर जी, जिसको कल सुनेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।
विदुर जी आए तो उसके विदुर जी जब आए मतलब यहाँ पर हस्तिनापुर में, तो धृतराष्ट्र जी को और कुंती महारानी को और गंधारी जी को लेकर चले गए। तब तक इनको मालूम नहीं था क्या नाम है, युधिष्ठिर जी को मालूम नहीं था कि भगवान चले गए।
हाँ।
तो अर्जुन उसके बाद ही आए, मतलब
5 वर्ष रहे, अरे 5 महीना रहे, केवल 5 महीना, 5 महीना द्वारिका में रहे अर्जुन, 5 या 7, कितना हो, 7 है कि 5 है, 5 महीना, 5 महीना के बाद लौटे। तो उतना नहीं, वो तो 35 वर्ष तो यात्रा किए और लास्ट में उनको उद्धव जी से भेंट हुई वहाँ पर वृंदावन में, और वहाँ से गए वहाँ हरिद्वार, और हरिद्वार से कथा सुनकर आ गए थे हस्तिनापुर। अरे तू क्या समझ नहीं रहा, 35 वर्ष नहीं, विदुर जी 35 वर्ष तीर्थ यात्रा किए, महाभारत युद्ध से पहले निकले थे, कुछ नहीं हुआ था अभी, युद्ध नहीं हुआ था उसके पहले निकल गए थे। हाँ, तीर्थ यात्रा में गए थे विदुर जी, और उधर घूमते घामते लौटे जब महाराज युधिष्ठिर यहाँ। अब तो 35 वर्ष तो महाराज युधिष्ठिर राज किए, अगर तुरंत संवाद मिलते हुए हिमालय की ओर चले गए, भगवान के जाने के बाद तो अपना राज मुकुट परीक्षित को दे दिए। तो महाभारत युद्ध हो गया, राज्य किए, उसके बाद विदुर जी आए थे लास्ट में, और विदुर जी लेकर धृतराष्ट्र को निकल गए। हाँ, परीक्षित महाराज का जन्म भी उसी समय हुआ, जिस समय महाराज परीक्षित को राज दिया गया उस समय परीक्षित महाराज 35 वर्ष के थे। हाँ, महाराज युधिष्ठिर का। हाँ, ना 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 ना, महाराज के भगवान के जाने के बाद तो तुरंत भगवान के उपस्थिति में 35 साल राज किए, भगवान के जाने के बाद तो चले गए तुरंत। युद्ध के समय नहीं, भगवान का 129 वर्ष बताया जाता है, 125 वर्ष बताया जाता है, दो ढंग से। तो ये 12 वर्ष तक यहाँ रहे ब्रज में, 11 वर्ष तक ब्रज में रहे, और 18 वर्ष तक इधर रहे मथुरा में, और 100 वर्ष द्वारिका में।
तो
125 वर्ष कौन कह रहा है? युद्ध के समय भगवान 125 वर्ष के थे, द्वारिका में थे, द्वारिका में रह रहे थे उस समय। द्वारिका से आए थे यहाँ सहायता के लिए, द्वारिका से हस्तिनापुर आया करते थे। 100 वर्ष भगवान द्वारिका में रहे, उसी 100 वर्ष के अंदर ही महाभारत युद्ध हुआ है। महाभारत युद्ध के बाद भागवत में वर्णन है कि फिर भी भगवान संतुष्ट नहीं थे कि अभी तो कुछ भार हल्का हुआ, कुछ बाकी ही है, अभी सब प्लानिंग ही कर रहे थे, जादवों का भार पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि एकदम लास्ट में पांडवों को मारकर जादवों का विनाश, ऐसे हुआ है, लेकिन उस समय बीच में ये सब समय बीता है। महाराज युधिष्ठिर जब गए तो उस समय परीक्षित 35 साल के थे, उनको राज दिया गया। और उतना काल तक वो कलयुग नहीं आ पाया था। जब भगवान चले गए तो उसको आ जाना चाहिए, द्वापर कलयुग आ जाना चाहिए, लेकिन उस समय भी नहीं आया। और बाद में जब परीक्षित महाराज के सामने प्रस्तुत हुआ, उनके राज्य में भी कुछ समय तक नहीं आया। ये तीसरे स्कंद में जो विदुर के तीर्थ यात्रा का वर्णन है, उसमें वर्णन है कि वो तीर्थ यात्रा 35 साल तक की है। नहीं नहीं, ऐसा तो कहीं हमको नहीं मिला। अच्छा, अगर ऐसा कुछ है भी तो भागवत इतिहास नहीं है। मैं कहा ना, अगर लिंक इधर उधर होता है टाइमिंग का, तो इसे भागवत से इसका उत्तर नहीं मिलेगा। हाँ, एक 11 स्कंद के 31वां अध्याय में है यादवों के विनाश का। वो ऋषि लोग दूसरे तीसरे स्कंद में भी वर्णन है कि ऋषि लोगों को पता था कि कैसे शब्द है, भगवत मत को विदा, भगवत मत को विदा। ऋषि लोग जो यह जान सकते हैं कि इसके यह लड़का है और कपड़ा लगाया गया है, ज्योति नहीं है, ये सब जानते थे। जो लोग प्रश्न किए कि इसको बतलाइए इसके गर्भ में क्या है, लड़का है कि लड़की है, तो जो इस बात को जान सकते हैं कि लड़का लड़की कुछ नहीं, इसको बनाया गया है, तो ये बतला सकते थे ना। लेकिन वो लोग चिढ़ गए, चिढ़ने का इसमें क्या उचित है। ये अभी जान सकते थे कि लड़के थोड़ा बच्चे हैं, चंचल हैं, मजाक कर रहे हैं। लेकिन वहाँ सूत गोस्वामी कहते हैं भगवान मत को विदा, भगवान के मत को ठीक ठीक जानने वाले ऋषियों ने श्राप दिया। वो जान गए कि अब भगवान रहना नहीं चाहते हैं, जाना चाहते हैं। और जैसे ट्रेन में कभी कभी सीट कंफर्म नहीं होता, तो आरएसी करके सरकार व्यवस्था कर दी है, एक ही सीट पर दो लोग चले जाएंगे, वैसे ही भगवान के अवतार में कभी कभी आरएसी सीट भी रहता है। तो द्वारिका के परिकरों में दो दो परिकर रहते थे, कुछ देवता लोग और कुछ नित्य परिकर। तो दोनों को दो जगह भेजना है ना, भगवत पार्षद तो भगवान के धाम में जाएंगे, देवता अपने लोक में जाएंगे। तो भगवान के पार्षदों में द्वारिका में आरएसी सीट पर बहुत से लोग थे, तो कुछ भगवान के धाम में गए और कुछ उनके साथ अपने अपने लोक में। तो वहाँ जो जादवों का विनाश हुआ है, पार्षदों का विनाश नहीं हुआ है, उस शरीर का विनाश दिखाया गया। और वो भी एक टीकाकार लिखते हैं कि वास्तविक विनाश नहीं हुआ, जादूगर की तमाशा की तरह छुरा मार लिया, खून गिर रहा है, लोग देख रहे हैं, कुछ हुआ नहीं। कुछ हुआ नहीं, लोग के सामने कभी कभी अब जादूगर लोग अपने बच्चे के गर्दन में ही छुरा मार देते हैं, यहाँ से वहां दौड़ कर लोग पैसा लाओ नहीं तो अभी मार दूंगा इसको। तो दौड़ कर लोग लाते हैं, तो देखने के लिए नजर बंद कर दिया गया है। ये जादवों का वास्तव में विनाश नहीं हुआ है। जैसे वसु जी थे, उद्धव भगवत परिकर है नित्य, लेकिन उसमें एक वसु भी थे, दो दो फंसे हुए थे, दो दो देवता और भगवत पार्षद। एक बार वहां पर मायापुर में एक बार मैं कथा किया, बहुत से लोग हंस रहे थे कि जब भगवान का अवतार हुआ चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो सारे भगवत धाम के सभी परिकर, चाहे रामावतार के हों, कृष्णावतार के हों, नारायण के धाम में रहने वाले हों, सभी लोगों के मन में हो गया कि हम भी चलें इनके साथ। तो सीट तो उतना था नहीं, तो अवतार अवतार में भाग लेने के लिए आ गए, तो सारे परिकरों में कई कई फंसे हैं, दो दो ही नहीं तीन तीन भी, सब आकर उसे लीला का आस्वादन किए करुणा पुरुषोत्तम की लीला में। तो कोई व्यास तो कोई मंजरी है, तो कोई क्या है, तो ये है वो है, भाई नारद जी का अवतार है, तो ब्रह्मा जी के अवतार है, तो हरिदास ठाकुर को कहते हैं ब्रह्मा और प्रहलाद दोनों फंसे थे उनके साथ। और भी कोई कहते हैं राधा रानी है, तो नारद जी है, श्रीवास जी तो विष्णु अवतार है, महाविष्णु है, तो ये है, सब ऐसे अनेक परिकर आए थे अवतार लीला का सुख आस्वादन करने के लिए। तो वैसे ही जदुवंश का विनाश के बहाने भगवान दोनों को डिवाइड कर दिए, तुम लोग अपने धाम में जाओ, तुम लोग अपने धाम में, तो नित्य धाम में चलो, देवता लोग अपने अपने स्थान में। तो ये काम कर दिया गया, वास्तव में कुछ हुआ नहीं, लोगों के आंखों के सामने दिखा दिया गया। ठीक है, हरे कृष्ण।